यूहन्ना की इंजील मुकद्दस उसका 12वां बाब 9वीं से 11वीं आयत तक, बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यसु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया, किन्होंने मशवरा किया? सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें। किसे मार डालें? लाजर को भी मार डालें। सबब क्या था? क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए थे। आमीन जी। आज का हमारा मजमून है, अपनी गवाही को महफूज कीजिए। क्या कीजिए? मेरे पीछे बोलिएगा, अपनी गवाही को महफूज कीजिए। गार्ड योर टेस्टमनी, गार्ड योर टेस्टमनी, प्रोटेक्ट योर टेस्टमनी। गवाही के ताल्लुक से, गवाही की प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, गवाही अगर आपकी जिंदगी में है तो उस गवाही के होने के सबब से आपके साथ क्या हो सकता है, और जब आपके साथ कुछ होगा तो आप उसके होने से पहले क्या कर रहे हैं या होने के बाद क्या करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। जिसके पास बेटा है, किताब मुकद्दस में बड़े वाजे तौर पर बयान किया गया है, जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, उसके पास गवाही है। इसका मतलब मैं और आप मसीह के मानने वाले हैं और हम टेस्टमनी को कैरी करते हैं, और ना सिर्फ यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में होने के सबब से बल्कि यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में करता है उसके सबब से मेरी और आपकी लाइफ में टेस्टमनीज हैं, और उन टेस्टमनीज को जो है वो मुझे और आपको गार्ड करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसलिए हमारा आज का मजमून ही ये है कि प्रोटेक्ट योर टेस्टमनी, अपनी गवाही को महफूज कीजिए। गवाही इस कदर कुदरत वाली चीज है, इस कदर कुदरत वाली बात है कि ये आपकी लाइफ में तो फर्क पैदा करती करती है, मगर आपकी सराउंडिंग में मौजूद, आपके गिर्दो नवा में मौजूद लोगों की लाइफ में तब्दीली का मुतहर्रिक है, मुहर्रिक है। तब्दीली का क्या है? मुहर्रिक है। और गवाही के ताल्लुक से क्यों बार बार किताब मुकद्दस में लिखा गया है, क्यों बार बार कहा गया है, इसका मतलब है टेस्टमनी जो है दर हकीकत जिंदगियों में तब्दीली पैदा करती है। इसलिए क्योंकि टेस्टमनी में कुदरत पाई जाती है, कुवत पाई जाती है, और वो टेस्टमनी जिसने मेरी और आपकी लाइफ में काम किया हो उसके सबब से ना सिर्फ आपकी लाइफ क्लेंज होती है, आपकी लाइफ एम्पावर होती है, बल्कि आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए खुदा की बादशाही के रास्ते इस्तवार करती है, खुदा यीशु मसीह की तरफ निशानदही करती है, खुदा यीशु मसीह की तरफ डायरेक्ट करती है गवाही। इसलिए किताब मुकद्दस में बारहा इन गवाहियों के ताल्लुक से लिखा हुआ है। आप देखिए कि हम कहते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और जब हम इसे कहते हैं ना टेस्टमेंट, टेस्टमेंट का दर हकीकत मतलब ही ये है, क्या करना? गवाही देना, उसके अहद की, उसके कामों की गवाही देना। और यहां पर जो अभी हमने एक वाक्य पढ़ा है ये यूहन्ना के ताल्लुक से है, सॉरी लाजरस के ताल्लुक से यूहन्ना लिख रहा है कि लाजर जो है वो मर गया था, मर गया था, और मरने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या किया? मुर्दों में से जिंदा किया। और जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उसके जिंदा होने के सबब से लाजर की जिंदगी में जिंदगी की गवाही थी, यानी वो मौजजा जो यीशु मसीह ने लाजर की जिंदगी में किया था उसके सबब से लाजर की जिंदगी में जिंदगी की गवाही थी, और उस गवाही के सबब से उसके इर्द गिर्द में एक हलचल मची हुई थी। टेस्टमनी के सबब से एक तूफान भपा हुआ था, ना सिर्फ उसके खानदान में, ना सिर्फ उसके हलका में, ना सिर्फ उसके मोहल्ले में बल्कि पूरे एरिया में एक हलचल मची हुई थी उस गवाही के सबब से जो उसकी जिंदगी में मौजूद थी। और वो गवाही क्या थी? वो गवाही यीशु मसीह के मुर्दों में से जलाने की कुदरत की गवाही थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ना सिर्फ मुर्दों में से खुद जिंदा होता है बल्कि जिंदा रखने की कुदरत रखता है और जिंदा करता है। और उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा करके ऐसी गवाही कायम की है, वो गवाही आज भी कौमों को, उम्मतों को इंपैक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। और अगर मैं और आप ईमानदार हैं तो मुझे इस गवाही को अपनी जिंदगी में रखना, और ये रखाई किसने है? ये लाजर ने। क्यों? क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है, सुनिए लिखा है, लेकिन सरदार काहनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डाले, क्योंकि उसके बायस, किसके बायस? उसके बायस, यानी लाजर, और इसे मैं कहूंगा कि लाजर की गवाही के बायस, बिकॉज ऑफ लाजरस टेस्टिमनी, लाजरस की गवाही के सबब से यहूदी जो थे वो यीशु मसीह के पास आ रहे थे। यहूदी जूडिज्म को छोड़ के, अपनी पुरानी रविशों को छोड़ के, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के, अपनी पुरानी कह लीजिए फितरत को छोड़ के, उन्होंने एक नए रास्ता का इंतखाब कर लिया था। और वो गवाही जिसने एक रास्ता बनाया था वो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट कर रही थी। और वो गवाही किसके सबब से थी? लाजर के सबब से, लाजर के मुर्दों में से जी उठने के सबब से। इसलिए याद रखिए कि गवाही की जो इंपॉर्टेंस है, समटाइम्स हम इसे बिलिटल करते हैं, हम इसे छोटा जानते हैं। जब यह कहा जाए कि गवाही दीजिए तो हम शायद झिझकते हैं, हम शर्माते हैं, मगर याद रखिए गवाही जिंदगियों में फर्क पैदा करती है, जिंदगियों को मुतहर्री करती है, हरकत में लेकर आती है किसी खास मंजिल के लिए, किसी खास गोल के लिए। तो चंद एक बातें गवाही के ताल्लुक से आपके दरमियान में रखना चाहता हूं। नंबर वन, टेस्टमनी में कुदरत मौजूद है। गवाही में क्या मौजूद है जी? कुदरत मौजूद है। और किताब मुकद्दस में इस कुदरत का जो है वो आपको मुशाहदा करते हुए बहुत से लोग मिलेंगे, और आपको भी करने के लिए कहा गया है। क्यों कुदरत मौजूद है? सुनिएगा ध्यान से, मुकाशफा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, वो बर्रे और बर्रे के खून और उस गवाही के कलाम के वसीला से गालिब आएंगे। क्या आएंगे? फिर बोलिए, क्या आएंगे? गालिब है, वो बर्रे के खून और उस गवाही के कलाम, लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया? गवाही के कलाम। आप बाद में पढ़िएगा 12वां बाब 11वीं आयत, मुकाशफा की किताब पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या वहां पर क्या खुदावंद फरमा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। याद रखिएगा गवाही में कुदरत है, और वो कुदरत क्या कर रही है? आपको गालिब आने का फजल अता फरमा रही है। जब आप गवाही देते हैं, जब आप टेस्टिमनी शेयर करते हैं कि आपकी लाइफ में किसी ने काम किया, आपकी लाइफ में किसी ने जो वो बीज बोए हैं कुदरत के, आपकी लाइफ में किसी ने जो वो पोर आउट किया हुआ कुछ ना कुछ, तो फिर उसके सबब से वो जो कलाम आप गवाही का बोलते हैं ना, जो कलाम आप बांटते हैं गवाही का, दर हकीकत वो क्या कर रहा है? कुदरत का कलाम है, और वो काम कर रहा होता है। और वो सिर्फ अगले की जिंदगी में, सुनिएगा, सुनने वाले की जिंदगी में फर्क नहीं पैदा कर रहा, सिर्फ ये नहीं कर रहा, बल्कि उसके बरक्स आप में भी काम कर रहा है, आप में भी कुदरत का काम कर रहा है। और उसे मुकाशफा की किताब में यूहन्ना यूं लिख रहा है, खुदावंद की मार्फत, कि उस गवाही के कलाम के वसीला से वो गालिब आएंगे। क्या आएंगे? और गालिब वो आएगा जिसमें कुदरत है, गालिब वो आएगा जिसमें कुवत है, और वो गवाही के कलाम के सबब से है, गवाही के खिलाफ। इसलिए आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि खुदावंद आपकी लाइफ में जो कुछ भी करता है ना, शेयर योर टेस्टिमनी, गवाही दीजिए, क्योंकि उसमें कुदरत है। आप कुदरत का तजुर्बा नहीं करना चाहते? और यहां पर लिखा कि यूहन्ना के सबब से, यानी वो बता रहा था लोगों को, लोग उसे देख रहे थे, उसकी लाइफ यानी वो चलता फिरता खुदा का मौजजा था, वो चलता फिरता यीशु मसीह की गवाही थी। लोग जब उसे देखते थे तो वो कहते, यार कल इस पर रो रहे थे, कल इस पर मातम कर रहे थे, कल इस पर नोहा किया जा रहा था, कल इसका जनाजा लेकर जा रहे थे, और लोग वावेला कर रहे थे, बहनें चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मातम कर रही थी, बट एवरीथिंग इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. जस्ट इन ए मोमेंट कैसे ये सब कुछ बदल गया. ये तो कब्र में उतारा गया था, इसकी कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर रखा गया था, अब ये कब्र से बाहर है, कफन समेत बाहर आ गया. सुनने वाले कह रहे हैं कि वो कफन समेत बाहर आ गया, सुनाने वाले कह रहे हैं कि वो कफन समेत बाहर. और यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा, लाजर बाहर आ जा. यानी उसकी लाइफ में इस गवाही से पहले जो कुछ हो रहा था वो मुर्दा था. गवाही से पहले जो कुछ होता है याद रखिएगा, दर हकीकत वो गवाही पैदा करता है. लाजर मुर्दा था और उस मुर्दे में गवाही पैदा करने के लिए जिंदगी का काम किया गया. मगर उस जिंदगी के काम से पहले जो कुछ हो रहा है ना, आप उन तमाम तर निशानियों को देखें, उन तमाम तर मुहरकात को देखिए, उन तमाम तर चीजों को देखिए, किस तरह सेटलमेंट हो रही है, किस तरह जो वो चीजें काम कर रही थी उस वक्त. बहनें मुतहरिक हैं, मरियम और मर्था बातचीत कर रही हैं, यीशु मसीह को मैसेजेस जा रहे हैं. करने वाला यीशु मसीह है, मगर करवाने के लिए कितनी चीजें कायनात में जो थी वो मसरूफ अमल थी. आपकी लाइफ में जब कुछ होता है ना, तो उससे पेशतर बहुत कुछ हो रहा होता है. लाजर की जिंदगी और लाजर की गवाही से पहले लाजर के मुर्दापन में बहुत कुछ हो रहा था, और वो किरदार बहुत से लोग अदा कर रहे थे, मगर कलीदी किरदार हमारा रब्बुल अफ़वाज अदा कर रहा था. की रोल वॉज बींग प्लेड बाय गॉड एंड गॉड अलोन. उसने वो किया था, और जब ही तो लाजर मुर्दों में से जी उठा है. इसलिए याद रखिए, जब मुकाशफा में ये लिखा है कि वो बर्रा के खून और गवाही के कलाम, कलाम की गवाही नहीं है, गवाही के कलाम के सबब से गालिब आएंगे. आप गालिब आना चाहते हैं, आप फतह पाना चाहते हैं, तो जो कुछ आपकी लाइफ में पहले खुदा ने किया उसकी गवाहियां देना शुरू करें. बाज़ुकात हम जो कुछ भी खुदा ने मेरी और आपकी लाइफ में किया था, हम उसे बयान करने से झिझकते हैं, शर्माते हैं. मगर क्या आप नहीं जानते कि जो कुछ उसने किया किसी सबब से किया, वजह से किया. क्यों? क्योंकि खुदावन को मालूम है कि जब मैं इसकी लाइफ में करूंगा तो कुदरत का काम होगा, और वो कुदरत का काम गवाही पैदा करेगा, और गवाही यीशु मसीह की तरफ पॉइंट आउट करती है, यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करती है. और आप नहीं चाहते कि लोग यीशु मसीह की तरफ रागिब हों. आप जब गवाही दें तो यूं ना कहिए कि ये मैंने किया है, बल्कि ये कहिए कि ये यीशु मसीह ने किया. आमीन. तो आप किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं? यीशु मसीह की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. और फिर उसके बाद दूसरी बात क्या होता है कि गवाही दरहकीकत एक धमकी है. गवाही क्या है? जहां ये कुदरत अपनी जात में, उसी कुदरत के साथ साथ ये यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करती है, उसके साथ साथ ये दुश्मन को एक धमकी भी है. और वो धमकी क्या? मार के वेख, उन्हें मैनू फिर जिंदा कर लेना. इट्स अ थ्रेट, इट्स अ थ्रेट, एंड कह लीजिए कंटिन्यूअल थ्रेट है एनिमी को. जितना आप ज्यादा टेस्टमनी देते हैं ना, उतना ज्यादा आप दुश्मन को धमकाते हैं, उतना ज्यादा आप उसे थ्रेट कर रहे हैं कि यू डू इट अगेन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, फिर देखना क्या होगा. इसलिए द मोर यू शेयर योर टेस्टमनी, जितना आप टेस्टमनी को शेयर करेंगे उतना ज्यादा आप अपने दुश्मन को धमकाते हैं. क्यों? आपकी उस धमकी में खुदा की कुदरत की गवाही है, और वो गवाही आपको गालिब आने पर फजल अता फरमाती है. वो ग्रेस है खुदा की जो आपको गालिब आने में मदद फरमा रही होती है. इसलिए अपनी टेस्टमनी को कुदरत जानिए खुदा की. आप चलते फिरते खुदा की कुदरत है आपकी लाइफ में. सुनिएगा एक बात, गवाही काम छोटा है या काम बड़ा है, इट डज नॉट मैटर. खुदा ने छोटा सा काम किया है या खुदा ने बहुत बड़ा काम किया हुआ है, आप उसे कुदरत जाने खुदा की. क्यों? क्योंकि वो आप तो कर नहीं सकते. अगर मेरी इस्तेतात में होता तो शायद मेरे लिए नामुमकिन था, मगर खुदा ने ये करके अपनी कुदरत की गवाही को मुझ में प्लांट किया है, और वो उस प्लांटेशन से चाहता है कि आप उसकी कुदरत को जाहिर फरमाएं. आमीन. आइए बोले हालेलुया. सो आप उसकी कदर जानिए, अपनी गवाही को छोटा ना कीजिए और ना छोटा करने की कोशिश कीजिए। छोटी से छोटी गवाही बड़े से बड़ा मौजजा पैदा कर सकती है। आमीन। आप शागिर्दों की लाइफ पर निगाह डालिए, वो क्या कर रहे थे? गवाही दे रहे थे, बस तैसे गवाही दे रहे थे। इसलिए जल्दी से आगे बढ़ूंगा। नंबर वन, आप क्या करें, आप क्या जाने कि गवाही में कुदरत मौजूद है। देयर इज पावर इन टेस्टिमनी। गवाही में कुदरत है। दूसरी बात, गवाही के खात्मा के लिए दुश्मन की मंसूबाबंदी भी है। और यहां आपको ठहरना और सोचना है कि दुश्मन की मंसूबाबंदी है गवाही के खिलाफ। आप और मैं और हम में से कई एक क्यों गवाही नहीं दे पाते? सुनिएगा, हम में से बहुत से लोग गवाहियों को दबाए बैठे होते हैं। अगर मेरी लाइफ में कुछ काम हुआ है, या किसी ने कुछ काम किया है, या खुदा ने मुतहरिक होकर मुहर्रक बन के काम किया है, मेरी लाइफ को चेंज किया है, मेरे काम को ब्लेस किया है, मेरी मुझे बीमारियों से रिहा कर दिया, मुझे सेहत अता फरमाई है, मेरे बच्चों पर निगाह की है, तालीमी, रूहानी, जिस्मानी, मुआशी तौर पर खुदा ने मुझे ब्लेस किया, आई डू नॉट वॉन्ट टू शेयर इट। क्यों? आई टेल यू द रीजन। आपका दुश्मन मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ आपकी गवाही को रोकता है। और आप शायद सोच रहे हैं कि ये आप हैं जो नहीं बांटना चाह रहे, बट देयर इज एन एनिमी आउट देयर, वो आपकी गवाही के खिलाफ है और वो आपकी गवाही को रोकता है। और यहां पर यूहन्ना 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन सरदार काहनों ने मशवरा किया। क्या किया उन्होंने? सरदार काहनों ने मशवरा किया, आपकी गवाही के खिलाफ मशवरे हो रहे हैं, आपकी गवाही को खराब करने के लिए, रोकने के लिए, दबाने के लिए, मारने के लिए मशवरे किए जा रहे हैं। वो कहां? इस रूहानी आलम में, आपके इर्द गिर्द, हो सकता है आपके दोस्त, आपके अहबाब और फौजें जो है, आसमानी लश्कर जो है, वो आपके खिलाफ जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपको गवाही से कौन रोक रहा है। यहां पर यूहन्ना जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि वो सरदार जितने थे, सरदार कहन, वो मशवरा कर रहे थे। यानी गवाही का इंपैक्ट देखें, ये थ्रेट थी दुश्मनों के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था, गवाही दुश्मन के लिए एक धमकी है और उस धमकी से डरे सहमे क्या कर रहे हैं? मंसूबाबंदी कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं आपके खिलाफ मंसूबाबंदी हो रही है। अगर आप यू नॉट गोना गार्ड योर टेस्टिमनी, आप पर हमले होंगे। गवाही के खात्मा के लिए दुश्मन की मंसूबाबंदी वाज़े है। और यहां पर वाज़े लिखा है कि सरदार काहनों ने मशवरा किया कि लाजर को मार डालें। वो लाजर को मारना चाह रहे हैं। नजर यूं आ रहा है कि वो लाजर, दे वांटेड टू किल लाजरस, बट द मैटर ऑफ फैक्ट दे वांटेड टू किल द टेस्टिमनी। वो उस गवाही को मारना चाह रहे थे, वो उस गवाही के खात्मा की तरफ जाना चाह रहे थे और उसके लिए मंसूबा बनाया जा रहा था, उसके लिए साजबाज की जा रही थी, उसके लिए कोशिशें की जा रही थी। आप और आपकी लाइफ में जो कुछ खुदा ने किया हुआ है, जब आप उसकी टेस्टिमनी देने से रुक जाते हैं या नहीं दे रहे होते, तो इसका मतलब है आपके खिलाफ जितने मशवरे किए गए हैं, आपकी गवाही को रोकने के लिए जितना काम किया गया है, उसमें आपका दुश्मन कामयाब है। वो कामयाब है, उसने आपको मुंह को रोका है, उसने आपको जो वो किसी ना किसी तरह से ब्लॉक कर दिया कि आप टेस्टिमनी ना दें, टेस्टिमनी ना दें। तो मुझे और आपको यह देखना है कि अगर वो मुझे रोक रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पत्रस और यूहन्ना ने हैकल के दरवाजा पर बैठे हुए लंगड़े को ठीक किया। वो जन्म का लंगड़ा था। किताबें मुकद्दस क्या कहती है कि पतरस ने उससे कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर जो कुछ हमारे पास है, व्हाटएवर वी हैव वी गोना गिव इट टू यू, हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से क्या कर, उठ और चल फिर। और लिखा है कि वो उठा, वो लंगड़ा जन्म का था, चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा और यीशु मसीह की गवाही देने लगा। और किताबें मुकद्दस में लिखा है, फक्कियों और फरीसियों ने जब ये देखा कि इस लंगड़े को जो हैकल के दरवाजा पर हमेशा आकर बैठता था, अब ये चल फिर रहा है,
اور اس کے سبب سے بڑے معجزے, اس کے سبب سے لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح کے پاس آ رہے تھے. تو کتاب مقدس میں لکھا ہے انہوں نے پطرس اور یوحنا کو پکڑا. انہیں پکڑنے کا مطلب ان کی گواہی کو بند کرنا تھا. انہیں پکڑنے کا مطلب کنفائن, دے وانٹڈ ٹو کنفائن دیئر ٹیسٹیمنی, دے وانٹڈ ٹو بلاک دیئر ٹیسٹیمنی. ان کی ٹیسٹیمنی کو روکنے کی اسٹریٹجی کی گئی. اور روکنے کی اسٹریٹجی میں کیا ہوا, انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور لکھا کہ انہیں مارا, انہیں مارا, مارا پیٹا گیا انہیں. آپ اپنی گواہی کے سبب سے ستائے جا سکتے ہیں, آپ اپنی گواہی کے سبب سے مارے جا سکتے ہیں, بٹ آلویز ریمبر, گواہی آپ کو آپ کے حالات سے باہر نکالتی ہے. جب آپ اس پر قائم ہیں, جب آپ اس پر بنے رہتے ہیں, جب آپ اس پر پابند رہتے ہیں, تو گواہی آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے مکاشفہ 12:11 میں, کیا لکھا ہے, کہ وہ گواہی کے کلام کے سبب سے غالب آئیں گے. اور جب وہ گواہی دے رہے تھے تو پطرس سے کہا گیا, پطرس یہ نام لے کر بات نہ کرنا. کون سا نام؟ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام سے اٹھا چل. پھر کس کے نام سے؟ کس کے نام سے؟ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور. اور پطرس کو اور یوحنا کو کیا کیا گیا؟ دشمن کی اسٹریٹجی, اس کا پلان, اس کا منصوبہ, دا کی دیٹ واز بینگ یوز ٹو میک میریکلز, اس کی کو جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا, کہ یہ نام لے کر آگے سے بات نہ کرنا. انہیں معلوم تھا جب یہ نام لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے, جب یہ نام لیا جاتا ہے تو کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے, جب یہ نام لیتے ہیں تو وہ لنگڑا چلنا شروع کر دیتا ہے, جب یہ نام لیا جاتا ہے کسی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, جب یہ نام لیا جاتا ہے تو جو ہاؤس پر بیٹھا ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اس نام اور اس نام کو لینے والوں کو اور ان کی گواہی کو روکا جائے. اور لکھا ہے کہ یہ نام لے کر بات نہ کرنا, اسٹریٹجی, آپ کو بھی روکا جائے گا, مجھے اور آپ کو بھی روکا جائے گا. They want to silence us. کس کے ذریعہ سے؟ فیئر کے ذریعہ سے, خوف کے ذریعہ سے ہمیں روکا جائے گا. مگر پطرس کا جواب آپ نے سنا کیا تھا؟ پطرس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے, اٹس امپاسبل. اب وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے سنا اس کی گواہی نہ دیں, اس کی گواہی نہ دیں. اٹس ناٹ پاسبل, یو کین ناٹ سٹاپ اس. وہ انہیں خوف زدہ کر رہے تھے اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خوف میں آ کر چھوڑ کے انہیں چلے گئے. دے وانٹ ٹو سائلنس یو. کس کے ذریعہ سے؟ خوف کے ذریعہ سے. آپ کا دشمن, اس کی منصوبہ بندی ہے کہ آپ میں خوف جو وہ امپیوٹ کرے, آپ میں خوف انجیکٹ کرے تاکہ آپ گواہی نہ دے پائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ میں شک پیدا کرتا ہے, آپ میں ڈاؤٹ پیدا کرے گا, آپ میں ڈسکریجمنٹ پیدا کرے گا, میری کس نے سننی ہے. دیٹس اے ڈسکریجمنٹ, نو ون از گوئنگ ٹو پے اٹینشن, کوئی میری سنے گا نہیں, ڈسکریجمنٹ ہے, ڈاؤٹ ہے, فیئر ہے جو روکتا ہے. اور دشمن شک پیدا کرتا ہے, دشمن خوف پیدا کرتا ہے, دشمن حوصلہ شکنی پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹیسٹیمنی کو نہ بانٹیں, نہ بانٹیں. اس لیے پطرس کو یوحنا کو روکا گیا ہے کہ یہ نام لے کر بات نہ کرنا, کیونکہ دیر از اے پاور ان دا نیم آف جیزس. آمین. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. اور آج اور اس وقت بھی لوگ اس گواہی کے خلاف تھے جو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے پیدا ہو رہی تھی. اور یاد رکھیے گا اس کی اسٹریٹجی کیا ہے. لکھا ہے انہوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو مار ڈالیں. الٹیمیٹلی لازر کو مارنے کے پیچھے کیا مارنا تھا؟ گواہی مارنی تھی, گواہی مارنا چاہ رہے تھے. آپ کی لائف میں جو کچھ ہوا ہے نا, خدا نے وہ کیا ہے, اور کیا اس لیے ہے کہ آپ اس کی ٹیسٹمنی دیں. چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام. کیوں؟ کیونکہ گواہی کے کلام کے وسیلہ سے آپ غالب آئیں گے. गवाही के लिए स्ट्रेटजी क्या है, उसे रोकने की क्या मंसूबाबंदी है? आपको खौफ के जरिए खामोश किया जाएगा, मार कूट के चुप करवाया जाएगा, शक और हौसला शिकनी पैदा की जाएगी। और फिर इस सबसे बड़ी बात बताने लगा, सुनिएगा, गुनाह के जरिए और कॉम्प्रोमाइज के जरिए आपको रोका जाएगा। आपकी गवाही, योर टेस्टिमनी इज गोइंग टू बी हिंडर्ड। किसके वसीला से? गुनाह के सबब से, समझौतों के सबब से। मुखालिफ मेरी और आपकी गवाही को रोकने के लिए गुनाह के दरवाजे हमें खोलने की कोशिश करता है, वो टेम्पटेशंस पैदा करता है, गवाही को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। सैमसन के साथ क्या हुआ है, दाऊद के साथ क्या हुआ है? उनकी गवाहियों को गुनाह के सबब से रोका गया है। अटैक, देयर टेस्टिमनीज वर अटैक्ड बाय यूजिंग द टूल ऑफ सिन, वो गुनाह का हथियार इस्तेमाल किया गया। आज मेरी और आपकी गवाहियां बाजुकात गुनाह के सबब से रुकती हैं, कि मुझसे, मेरी जिंदगी से मुखालिफ वो काम करवाएगा जिसके सबब से मैं गवाही ना दे पाऊं। बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, उस गुनाह की मुआफी भी उसी ने देनी है। आमीन। उसके पास उसका हल मौजूद है। बर्रे का लहू आज भी मुआफ कर रहा है, आज भी धो रहा है। इसलिए आप उसके लहू पर नजर करें और अपनी गवाही को कायम रखें। डोंट स्टॉप शेयरिंग योर टेस्टिमनी। तो इसलिए दुश्मन के हथियारों को, उसके हथकंडों को, उसकी साजिशों को, उसके मंसूबाबंदियों को नजरअंदाज करके गवाही के कलाम के सबब से उस पर गालिब आए, खुदा आपको ब्लेस करेगा। आइए बोले हालेलुया, फिर बोलिए हालेलुया। तीसरी बात, गवाही को बांटिए, क्योंकि बात तो हम मुसलसल कर रहे हैं गवाही देने की, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, गवाही को बांटिए और मुसलसल बांटिए। क्या कीजिए? क्योंकि खुदा की मर्जी है। जावेद भाई, खुदा की क्या है? मर्जी है। नजर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा जरा जल्दी से, गवाही बांटिए बल्कि मुसलसल बांटिए, मुसलसल बांटिए। क्यों? क्योंकि यह खुदा की मर्जी है। आपको मालूम है मरकस की इंजील मुकद्दसा में जब हम स्टडी कर रहे थे मरकस को, पांचवें बाब उसकी 19वीं आयत में, पांचवें बाब में स्पेशली लिखा हुआ है कि यीशु मसीह गदरसीनियों के इलाका की तरफ गया, और वहां पर क्या था? एक शख्स बदरू गिरफ्तार था, जिसमें क्या था? लश्कर था। मरकस 5:19 में लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे कहा, जब उसमें से लश्कर निकल गया तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जा अपने घर वालों को बता जाके, क्या कर? गो एंड टेल योर फैमिली, जा और अपने घर वालों को बता। यानी आपकी गवाही आपके घर से शुरू होनी चाहिए, आपके लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके बेटों को, बेटियों को, बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी बीवी को, आपके भाई को, आपकी बहनों को, आपके खानदान को मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने आपकी लाइफ में क्या किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, उस लश्कर में से आजाद आदमी से कहा कि जा और अपने खानदान को बता जाके। ये इंपॉर्टेंस है गवाही को बांटने की, कि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं जा और बता जाके। जिस तरह कोरियों को शिफा देकर यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ और अपने तई कहनों से चेक करवाओ, उन्हें दिखाओ जाकर। वो एक टेस्टिमनी की बुनियाद रख रहा था, और यीशु मसीह की सारी खिदमत और उसका फैलाव गवाहियों के सबब से था। उसकी बादशाहत की वुसत गवाहियों के सबब से थी। जब आप एंड यू स्टॉप गिविंग टेस्टिमनीज, तो काम ना सिर्फ रुकता है बल्कि आप रोकते हैं, आप रोकते हैं खुदा, खुदा के काम, उसकी बादशाहत, अपने आप को बढ़ने में, गालिब आने में, आप अपने चर्च के ताल्लुक से भी। यू नेवर टेल पीपल। जब आपकी लाइफ में किसी ने काम किया है, जब आपकी लाइफ में काम हुआ है, तो यू हैव टू बी इन द फोरफ्रंट। कीप शेयरिंग, गवाही बांटिए, मुसलसल बांटिए, क्योंकि मुसलसल गवाही का कलाम मुसलसल गालिब आने का फजल अता फरमाता है। आइए बोले हालेलुया। जब आप मुसलसल गवाही बांटते हैं तो आप दूसरों को हौसला देते हैं कि भैया ये कैंसर है, यीशु तो मुर्दे जिंदा कर देता है। एनकरेजमेंट है, भैया ये छोटी सी बीमारी है, उसने तो कोरियों को चंगा कर दिया भैया, ये तो कुछ भी नहीं है, उसने मेरी लाइफ में कितने बड़े बड़े काम किया। यू नीड टू टेल पीपल, आपको लोगों को बताना, क्योंकि आपकी गवाही लोगों को हौसला देती है, और जहां ये लोगों को हौसला देती है उसके साथ साथ खुदा को जलाल भी दे रही होती है। ग्लोरीफाइज गॉड, खुदा को जलाल देती है। और आप नहीं चाहते कि खुदा को जलाल दिया जाए? कौन है जो नहीं चाहेगा? सभी चाहते हैं कि लोग हौसला पकड़ें, खुदा जलाल पाए और हम ईमान में मजबूत किए जाए। आमीन। आप जब गवाही बांटते हैं और मुसलसल बांटते हैं तो आप दूसरों को हौसला देते हैं, खुदा को जलाल देते हैं और आप ईमान में मुसलसल बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ईमान की गवाही, आपके गवाही का कलाम जो है वो ना सिर्फ दूसरों को एनर्जाइज कर रहा है, मुतहरिक कर रहा है, उनमें काम कर रहा है और यीशु मसीह की जिंदगी के बीज बो रहा है, बल्कि आपकी लाइफ को भी मजबूत कर रहा होता है, आपके फेथ को एनर्जाइज करता है, आपका फेथ ग्रो करता है। और हम अमूमन कहते हैं ना कि वी नीड टू गो टू अनदर लेवल, हमें एक और लेवल पर जाना चाहिए। नो, वी नीड टू ग्रो टू अनदर लेवल, हमें उस लेवल की तरफ जो वो परवरिश पानी होती है, तरक्की करनी होती है। वो तरक्की कैसे होती है? हम जंप नहीं लगाते, हम ग्रो करते हैं, वी ग्रो टू अनदर लेवल। वो लेवल तक जाने के लिए आपको अपने फेथ को जो है वो एनर्जाइज करना है, और आपका फेथ मुकम्मल है ना, आपकी गवाहियां ढेरों मर चुकी होंगी दुश्मन की मनसूबाबंदी के सबब से, मगर आपने उन्हें रिवाइव करने की कभी कोशिश नहीं की। आइए बोले हालेलुया। चौथी बात, गवाही के वास्ते दुश्मन का डटकर मुकाबला करें, दुश्मन का डटकर मुकाबला करें, यानी स्टैंडिंग फर्म इन द, कह लीजिए इन द टाइम ऑफ ट्रायल, अपोजिशन के मामला में, दुख के मामला में, मुसीबत के मामला में आप मुखालफत का डट कर मुकाबला करें। कैसे? क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, आप जब डट जाएंगे तो आपको एक तो सच्चाई को याद रखना है कि लोग मेरे सबब से तुम पर लानतान करेंगे। किसके सबब से? अब मेरे सबब का आपको मालूम क्या है? मैं इसे रिफ्रेस करने लगा हूं, मेरी गवाही के सबब से लोग तुम्हें सताएंगे। किसके सबब से? मेरी गवाही के सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे, सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे। मगर याद रखना, उन्होंने हरे दरख्त के साथ भी ऐसा ही किया था, मगर याद रखना कि मैं अब से लेकर अब तक तुम्हारे साथ हूं। यानी आप अगर अपनी गवाही पर कायम है और मुसलसल उसे बांट रहे हैं तो आप अकेले नहीं है, बल्कि आपका यीशु मसीह आपके साथ है हमेशा के लिए, क्योंकि आपकी मुसलसल बांटी की गवाही यीशु मसीह को मुसलसल आपके साथ चलाती है। क्योंकि जिसके आप गवाहें वो आपका प्रोटेक्टर बन के आपके साथ चल फिर रहा होता है। और पतरस और यूहन्ना की गवाही को रोका गया, जो गवाही वो यीशु मसीह के वास्ते और वसीले और उसके लिए दे रहे थे, उसे रोकने की कोशिश की गई और उसने कहा कि देखो भैया, मुमकिन नहीं है, नो वन कैन स्टॉप अस, कोई हमें रोक नहीं सकता उस गवाही को देने के लिए। तो उन्होंने डट के मुकाबला किया। इसलिए जब आपके पास गवाही हो तो आप तीन चीजों की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। नंबर वन एक्सपेक्टेशन है कि आपकी अपोजिशन होगी, लोगों से नहीं, सिर्फ आपकी मुखालफत सबसे पहले शरारत की फौजें करेंगी, जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं, यू डोंट पे अटेंशन टू देम। हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों पर जो आसमानी मुकामों पर बसेरा करती हैं, उनके साथ फाइट है। वो सबसे पहले आपकी मुखालफत में आएंगे, सबसे पहले उनका काम है। फिर वही फौजें लोगों में से होकर काम कर रही होती हैं और आपको स्टॉप करने की कोशिश करती हैं। जो कुछ खुदा ने आपकी लाइफ में किया हुआ है उसके बयान से रोकती हैं, उसे लिखने से रोकती हैं, उसे बताने से रोकती हैं, उसे बांटने से रोकती हैं, उसके कुदरत के एतराफ के ताल्लुक से वो रोकेंगी। तो आप एक्सपेक्ट करें कि अपोजिशन जो है वो वाजबी भी है और वो हतमी भी है। मुखालफत होगी, मगर उस मुखालफत में आप दिल ना छोटा करें, क्योंकि उसने, अगर वो सदरक मेशक अबदनजू के साथ था, उनकी गवाही के सबब से, उनकी आग में डैनियल की गवाही के सबब से, डैनियल के साथ वो शेरों की मान में था, तो आपके साथ भी वो होगा। वो आपके साथ भी वैसे का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि आज कल वो अब तक क्या है, यकसा, वो यकसा रहता है। तो आप एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ बदल सकता है मगर मेरा यीशु मसीह नहीं बदल सकता। मुखालफत की तवक्को कीजिए और खुदा की मुहाफजत पर यकीन कीजिए। खुदा की मुहाफजत पर, प्रोटेक्शन पर, प्रोविजन पे यकीन कीजिए कि खुदा मुहाफिज है हमारा। आमीन। वो मुहाफिज है, वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो हमेशा बचाता आया है और बचाता रहेगा। मुखालफत की तवक्को कीजिए, मुहाफजत पर भरोसा कीजिए और ईमान में मजबूत रहिए, तो फिर आप दुश्मन का मुकाबला करते चले जाएंगे। अगर आप मुखालफत पर आप निगाह नहीं करते तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी मुखालफत हो सकती है। यू विल बी अपोज्ड। आप अपनी हर नेकी के मामला में अपोज किए जाएंगे। याद रखिए, जब जब आप नेकी करेंगे तब तब आपकी मुखालफत होगी। और सबसे पहले किस कौन करेगा? दुश्मन करेगा। अनसीन एनिमीज आपकी मुखालफत कर रहे होते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट यू टू डू समथिंग गुड, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब जब आप अच्छा करेंगे जलाल उसे मिलेगा, जब जब आप बेहतरी दिखाएंगे जलाल उसे मिलेगा, उसकी कुदरत का बयान किया जाएगा। और आप समझते हैं कि दुश्मन चाहता है कि उसके जलाल दिया जाए, उसकी कुदरत का बयान किया जाए? हरगिज नहीं। तो सबसे पहले वो आपके खिलाफ उन फकीयों, फरीसियों और उन सरदार कहनों की तरह साजिशें करता और करवाता है। वो आपके काम को हिंडर करता है, वो रोकता है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अपोजिशन होगी, मगर उस अपोजिशन में आपने खुदा की मुहाफजत पर मुकम्मल यकीन रखना है। पत्रस और यूहन्ना को मुकम्मल यकीन था, इसलिए वो डट के मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चार लगाई है, चार और लगा लो। जस्ट रिफ्रेज कर रहा हूं, क्योंकि उन्हें मारा गया था, उन्हें कूटा गया था। आखिरी चंद एक बातें, आप अपनी गवाही को कैसे महफूज रख सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है, क्योंकि हम गवाही की बात बार बार कर रहे हैं। हमने कहा गवाही में कुदरत है, हमने कहा कि गवाही हमें बांटनी चाहिए, हमने कहा कि हमें गवाही की जो वो परवरिश करनी चाहिए, हमें मुखालफत में डट के मुकाबला करें। बट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट इट? हम कैसे टेस्टिमनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जितनी गवाहियां आपके पास मौजूद हैं उन्हें आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी गवाही को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है? आपकी टेस्टिमनी को गार्ड करना चाहिए, इसे महफूज करना चाहिए। हां, मुझे और आपको इस पर काम करना चाहिए। और सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं? आपको एक मसीह में मुकम्मल और मुसलसल जिंदगी गुजारनी है। सुनिएगा, फिर से कहने लगा हूं, जुमला बोलता हूं। अगर आप अपनी गवाही को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, गार्ड करना चाहते हैं, तो आपको मसीह में मुकम्मल और मुसलसल लाइफ गुजारनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वीकली क्रिश्चियंस हैं, हम अतवारी क्रिश्चियन हैं और पूरे छह दिन हमारी लाइफ जो है वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर लाइफ एंड यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर टेस्टिमनी। मुकम्मल और मुसलसल मसीह के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, फिर आपकी गवाही मजबूत और महफूज होती है। फिर आपकी गवाही पर कोई लान तान नहीं है, फिर कोई आपकी गवाही पर हमले करने वाला जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमले करता भी रहेगा तो उसके सारे हमले नाकाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं उसमें, उसके वसीला से, उसके लिए जिसने आप में गवाही पैदा की हुई है। तो आप मुकम्मल और मुसलसल मसीह यीशु में जिंदगी गुजारिए। हमारी लाइफ जो है वो इतनी डिस्टॉर्टेड है, इतनी डिवाइडेड है कि हम चर्च में, चर्च से निकलते द मोमेंट वी लीव द बाउंड्रीज, द मोमेंट वी लीव द सेंचुरी, हमारी लाइफ पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। हम टोटली तौर पर भूल जाते हैं कि हम कहां से कहां और कैसे आ गए। खुदावंद के की हुजूरी से निकलते ही हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर टेस्टिमनी। इनफैक्ट अगर टेस्टिमनी प्रोटेक्ट हो गई ना, तो आपकी लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी, आपकी जिंदगी प्रोटेक्ट हो जाएगी। सुनिएगा, दुश्मन आपको मार सकता है, आपकी टेस्टिमनी को नहीं मार सकता। क्यों? याद रखिए, आप टेस्टिमनी के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यू कैन ले डाउन योर लाइफ। यीशु मसीह के शागिर्दों ने गवाही की खातर क्या किया? अपनी जाने दी ना गवाही की खातर, मगर गवाही पर हरफ नहीं आने दिया, गवाही पर हरफ नहीं आने दिया, गवाही को मजबूत और महफूज रखा है उन्होंने। उन्होंने अपने चाल चलन से, अपने रवैये से, अपने मिजाज से, अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने उठने बैठने से, अपनी जिंदगियों से उसकी गवाही को मजबूत रखा है और अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जिंदगी के हवाला नहीं, मौत के हवाला। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करता है वो जिंदगी का ताज पाता है। स्टिफनेस को संसार किया जा रहा था। ही वॉज बींग स्टोन्ड, द फर्स्ट मार्टर ऑफ क्रिश्चियनिटी, पहला शहीद है मसीहत का, उसे संसार किया जा रहा था। क्यों? उस गवाही के वसीला से जो खुदा ने उसमें बोई थी, उस गवाही के सीड के वसीला से ही वाज बीइंग स्टोन्ड। आप कहेंगे तो वो तो प्रोटेक्शन कहां पर गई? मैं आपको बताता हूं प्रोटेक्शन किसकी थी। आपकी गवाही की प्रोटेक्शन थी, आपकी गवाही को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो उससे डिविएट नहीं हुआ, वो उससे बागी नहीं हुआ, उसने बगावत गवाही से नहीं की, उसने अपने बदन के खिलाफ बगावत किया है, वो उसके खिलाफ हुआ है। उसने कहा कि मुझे मार भी दो, मगर गवाही को नहीं मार सकते, क्योंकि गवाही हमेशा की जिंदगी में लेकर जाती है, गवाही हमेशा की जिंदगी में दाखिल करती है। यू कैन किल माय बॉडी, यू कैन किल माय फ्लैश, बट ऑलवेज रिमेंबर टेस्टिमनी कैन नेवर एवर बी किल्ड एंड ही विल नॉट लेट इट हैपन। और वो उसे मारने नहीं देगा। वो संसार कर रहे थे कि छोड़ दे, वो संसार कर रहे थे कि स्टॉप शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, गवाही नहीं बांटनी, मगर वो गवाही की खातिर अपने जिस्म और अपनी जिस्म की जिंदगी पर गालिब आया गवाही के कलाम के सबब से। कब हम सरेंडर करते हैं जिंदगी के लिए? जब हमें जिंदगी से मोहब्बत होती है। तुम में से कौन है जिसने मेरी खातिर अपने मां बाप, बहनों, अजीजों, भाइयों को छोड़ा, अपना इनकार किया है? और स्टिफनेस ने अपनी साथ का, अपने जिस्म का, अपनी उस जमीनी जिंदगी का इनकार किया गवाही के लिए। दैट्स हाउ ही प्रोटेक्टेड हिज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी के खिलाफ नहीं गया। बट आप दूसरी तरफ देखिए, जो सरेंडर कर देते हैं जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए। हमने पीछे बात की थी कि किस तरह से गवाही खराब हो सकती है, अब्लीस कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है। उनमें से गुनाह एक था कि वो गुनाह को यूज करता है। यहूदा इस्करियोती की गवाही देखिए, उसे चुना किसने था? यीशु मसीह ने। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, नॉट ऑल टाइम। उसने उसे चुना था, मगर उसकी गवाही उसके गुनाह के सबब से मारी गई है। मेरी और आपकी गवाहियों पर हमले मेरे गुनाह के सबब से होंगे। सो आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। आप क्या करें? एक मुकम्मल और मुसलसल मसीह में जिंदगी गुजारें। दूसरी बात, आप गवाही को मजबूत करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, आप खुदा के कलाम में डीपली रूटेड हो। यू नो व्हाट आई मीन? कलाम में रूटेड होने का मतलब यह है, कलाम में गाड़े जाने का मतलब यह है, कलाम में बने रहने का मतलब क्या है, कलाम में जड़ें पकड़ने का मतलब क्या है, कि आप कलाम की जमीन में लगाए गए हैं और आप उसी में ग्रो करें, कहीं और नहीं। आपकी जड़ें कलाम में मजबूत और बढ़ती चली जाएं। जब आपकी जड़ें कलाम में मजबूत और महफूज और बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर ऊपर आपका फल दुनिया देखेगी, फिर दुनिया देखेगी। इसलिए आप गवाही को मजबूत करना चाहते हैं तो कलाम लिखा है, गवाही के कलाम के वसीला से तुम गालिब आओगे। गवाही के कलाम के वसीला से तुम गालिब। इस कलाम को, ये गवाही का कलाम है, इसे मुसलसल मुकम्मल तौर पर बांटें और अपनी जात में रखें, और खुदावंद के नाम को इसी से जलाल मिलेगा। आमीन। तीसरी बात, आप किस तरह से अपनी गवाही को महफूज रख सकते हैं? आपको ईमानदारों की मुकम्मल फेलोशिप चाहिए। یہاں پر یہ نہیں میں نے کہا آپ کو کامل ایمانداروں کی مسلسل فیلوشپ چاہیے. کامل کوئی نہیں ہے, ایمانداروں کی فیلوشپ چاہیے. بلیورز سے یو نیڈ ٹو سراؤنڈ یور سیلف وتھ بلیورز. کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھیں گے آپ ویسی باتیں کریں گے. آپ ایمانداروں کے درمیان بیٹھیے آپ ایمان کی باتیں کریں گے, کلام کی باتیں. پھر آپ سنیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہے تو ہر گالی کلام دی کرتا ہے, یہ کلام سے باتیں کرتا ہے, یہ آیتوں سے باتیں کرتا ہے. آپ کی لائف میں جب مسلسل مکمل طور پر کلام غالب ہوگا تو یاد رکھیے آپ کی گواہی جو ہے ول بی پروٹیکٹڈ. تو آپ ایمانداروں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیجئے, گھیرا رکھیے, ہر وقت انہی کے درمیان میں رکھیے. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, دا مومنٹ آپ ایمانداروں کی جماعت سے باہر جاتے ہیں, کسی اور جماعت کا حصہ بنتے ہیں سیکولر ورلڈ میں, تو آپ پر اسی کا انفلوئنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ امپیکٹ ہوتے ہیں. اس لیے بائبل نے جو بائبل کا جماعت کے پلرز ہیں, جس میں ہولی کمیونین ہے, اس میں رسولوں سے تعلیم پانا ہے, دعا کرنا ہے, اور چوتھی بات کیا ہے, رفاقت رکھنا. امال کی کتاب تیسرے باب میں کیا لکھا ہے, وہ چار کام کرنے میں مشغول ہو گئے, رسولوں سے تعلیم پانا, کلام اور کلام کی گواہی سیکھتے رہے, دوسری بات دعا کرنے میں مشغول ہو گئے, تیسری بات وہ روٹی توڑ دیں, اور چوتھی بات رفاقت رکھنے میں. ہمیں رفاقت سے کون روکے گا؟ مخالف, دشمن روکتا. اس کی اسٹریٹجی ہے کہ انہیں روکو کہ یہ فیلوشپ نہ کر پائیں. تو آپ مکمل اور مسلسل مسیح میں زندگی گزاریں, کلام میں روٹیڈ ہو جائیں, ایمانداروں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیجئے, گھیر کے رکھیے. اور آخری بات, اپنی دلیری کے لیے دعا کریں کہ آپ دلیر ہوں. کس کے لیے؟ جب آپ دلیری کے ساتھ اپنے کلام کی گواہی دیں گے تو آپ کا کلام پروٹیکٹڈ ہوگا اور آپ مسلسل بانٹنے کی طرف جائیں گے. آمین, آمین. آئیے اپنے آپ کو گواہی کے لیے تیار کیجئے, اور جتنی باتیں آپ نے گواہی کے تعلق سے سیکھی ہیں اسے گارڈ کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کی گواہی نیک نامی, آپ کی گواہی آپ کے خدا کے جلال, آپ کی گواہی یسوع مسیح کی طرف پوائنٹ کرتی ہے. آئیے خدا سے کہیے, خداوند دیکھ میں تیری حضوری میں آتی ہوں اور تجھ سے التماس کرتا کرتی ہوں کہ میری گواہی میری زندگی میں ہونے والے کاموں کے سبب سے ہے, مگر جلال تیرا ہوگا میرے خدا, بادشاہ تیری کو وسعت دی جائے گی میرے خدا. آئیے یاد رکھیے کہ آپ کی گواہی ایک قدرت والے ہتھیار کی طرح ہے. یہ وہ ہتھیار ہے قدرت والا جس نے لازر کو مردوں میں سے جلا دیا تھا. یہ وہ گواہی ہے, یہ وہ گواہی کا کلام ہے, یہ وہ قدرت کا کلام ہے جس نے ہیکل کے دروازہ پر بیٹھے ہوئے لنگڑے کو شفا دی تھی اور اس سے گواہی جنم لیتی ہے. اس لیے آپ اپنی گواہیوں پر نظر کیجئے. خدا نے آپ کی لائف میں چھوٹا کام کیا ہے, خدا نے آپ کی لائف میں بڑا کام کیا ہے, اس کام کی گواہی دیجئے. خدا نے اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے. اس نے اس شخص سے جس میں لشکر تھا اسے کہا جا اور اپنے خاندان کو بتا, اور وہ گیا اور اس نے اپنے خاندان کو بتایا. آپ جب تک گواہی کو چھپا کے رکھتے ہیں آپ خدا کی قدرت کو چھپا کے رکھتے ہیں. آپ گواہی کو چھپاتے ہیں آپ مریض سے دوائی چھپا رہے ہیں. آپ کے پاس اگر کسی کے لیے زندگی کی دعا ہے تو وہ گواہی کا کلام ہے. آئیے گواہی کا کلام بانٹیے, آئیے گواہی دیجئے خداوند کی. کیوں؟ کیونکہ گواہی میں قوت ہے. آپ اس قوت کا اندازہ لگائیں گے. جانیے کہ گواہی کے خلاف منصوبہ بندی ہوگی, دشمن ہتھیار استعمال کرے گا, وہ خوف کے وسیلہ سے, شک کے وسیلہ سے, حوصلہ شکنی کے وسیلہ سے آپ کو چپ کروانے کی کوشش کرے گا. مگر آپ کو گواہی کو بانٹنا ہے, اور مسلسل بانٹنا ہے, مسلسل بانٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دوسروں کو حوصلہ دیتی ہے, خدا کو جلال دیتی ہے, اور آپ کے ایمان کو مضبوط اور تقویہ دیتی ہے. ہاللیلویا. گواہی کے معاملہ میں دشمن کا مقابلہ کیجئے, ڈٹ کر کیجئے, ڈٹ کر کیجئے. توقع کیجئے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ مہم جوئی کی جائے گی، آپ کے خلاف مشورے کیے جائیں گے، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی جائے گی، مگر آپ نے خدا کی محافظت پر یقین رکھنا ہے، آپ نے ایمان میں مضبوط اور محفوظ رہنا ہے، اور آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کی گواہی کو مضبوط کر سکتا ہے، اور وہ کام مسیح میں مکمل اور مسلسل زندگی گزارنا ہے، اس کے کلام میں روٹیڈ ہونا ہے. خداوند کا نام آپ کی زندگیوں سے جلال پائے گا. ہاللویہ. کوائر سے التماس ہے کہ بینی اور شالو آپ دونوں پلیز آئیں جلدی سے. ہاں یہ چند لمحے آپ کے پاس ہیں، اس سے کہیے خداوند فضل دے کہ میں اس گواہی کے کلام کو محفوظ اور مضبوط رکھ سکوں. مجھ پر فضل دے میرے آسمانی باپ کہ میں تیرے کلام کے معاملہ میں کبھی خوف کا شکار نہ ہوں، شک کا شکار نہ ہوں، حوصلہ شکنی کا شکار نہ ہوں، بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کروں دشمن کا جو میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جو میرے خلاف منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس کے خلاف میں لڑوں گا. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. تعریف ہاللویہ. تمجید ہو میرے خدا. اے باپ، تیری گواہی کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے تیرے لوگ، تیرے رسول، تیرے نبی غالب آئے میرے خداوند. فضل دے کہ ہم اسی گواہی کے کلام کے سبب سے غالب آئے میرے خداوند، مقابلہ کریں ابلیس کا ڈٹ کر میرے خداوند. ہماری زندگی تیری گواہی دے، ہمارا عمل تیری گواہی دے، ہماری گفتگو تیری گواہی دے. میرے خداوند ہم جانتے ہیں کہ تیرے لوگوں نے تیری گواہی کے لیے اپنی زندگیاں نظر کر دی ہیں. میرے خداوند ہم جانتے ہیں کہ تیرے لوگوں نے تیری گواہی کی خاطر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، انہوں نے موت کے حوالہ کر دیا، انہوں نے دشمن کے حوالہ کر دیا، مگر گواہی پر آنچ نہیں آنے دی، گواہی کے وہ منکر نہیں ہوئے. آج میں اور آپ جب گواہی کے منکر ہوتے ہیں، جب گواہی کا انکار کرتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں. آئیے لازر کی طرح ڈٹ جائیے، آئیے پطرس اور یوحنا کی طرح ڈٹ جائیے، آئیے ڈینیل کی طرح ڈٹ جائیے، آئیے اپنے آپ کو صدرک، میسک اور ابنجو کی طرح اپنے آپ کو مضبوط کیجیے اور ڈٹ جائیے مخالفت کے سامنے، اور ڈٹ کر گواہی کا جو ہے وہ اعلان کیجیے. خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو محفوظ اور مضبوط رکھے گا. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے اپنے بچوں کے ساتھ ہو، ہمیں گواہی میں مضبوط کر، گواہی میں خداوند آسمانی باپ آگے بڑھا اور اپنے نام کو جلال دے. ہاللویہ. یس لارڈ ہاللویہ.